जो वास्तविक ब्रह्म तत्व को जानकर चित्त को बाधित करके अपने आप में विश्रांति पाए, उन पुरुषों के कैसे लक्षण होते हैं अथवा वह पद कैसे पाया जाए, इस विषय का आज हम चिंतन करेंगे। मानवी अगर आत्मज्ञान के तरफ नहीं है तो उसकी बाह्य जो चेष्टा है न वो हास्यास्पद हो जाती है। जब तक मृत्यु सिर पर खड़ी है और कोई आदमी संतोष मानकर जी रहा है तो या तो बेवकूफ है या तो दगाबाज, या तो उसे वास्तविक संतोष का पता नहीं है या तो किसी को दगा देने के लिए कहता क्या हमारे तो संतोष हमारे तो लहस।
ये श्लोक हम विचार करेंगे।
नोद्विग्नम् न च संतुष्टम् अकर्तृ स्पन्दवर्जितम् निराशं गतसंदेहम् चित्तं मुक्तस्य राजते।
मुक्त पुरुष का उद्वेग रहित चित्त, उद्वेग रहित होना ये बड़े में बड़ा धन है। उद्वेग रहित चित्त होना ये बड़ा में बड़ा धन है। नो उद्विग्नम न च संतुष्टम, उद्विग्न होना ये तो उपलब्धि है बड़ी। तो जो उद्विग्न नहीं है वो संतुष्ट होता होगा। जीवन में जब जब दुख आता है, परेशानी आती है, तो परेशानी दुख जन्म मृत्यु ये सारे के सारे चित्त के दोषों के कारण आते हैं। हम अगर परमात्मा से दूर महसूस करते हैं अपने को तो चित्त के दोषों के कारण, और अपने को हम धर्मात्मा मानते हैं और श्रेष्ठ मानते हैं ये भी एक चित्त का सात्विक दोष है। अपने को हम शुद्ध और पवित्र मानते हैं ये भी एक चित्त का दोष है, और हम अपने को अपवित्र मानते हैं ये भी चित्त का दोष है। जय जय। हम अपने को हिंदू मानते हैं ये भी एक चित्त का स्पंदन है, और हम अपने को गुजराती मारवाड़ी या इंसान मानते हैं, माई या भाई मानते हैं, ये भी चित्त का दोष है। जो चित्त से पृथक हो गए, जिनको ब्रह्मज्ञान की आचमन पीने को मिल गई, जो वास्तविक ब्रह्म तत्व को जानकर चित्त को बाधित करके अपने आप में विश्रांति पाए, उन पुरुषों के कैसे लक्षण होते हैं अथवा वह पद कैसे पाया जाए, इस विषय का आज हम चिंतन करेंगे। श्री राम। चित्त में जब जब आकांक्षाएं आती है, इच्छाएं आती है, तो उद्वेग होता है। इच्छाएं नहीं होती तो शांति होती है, लेकिन वो इच्छाएं नहीं होती ऐसा नहीं, इच्छाएं दबी हुई होती। किन जिस बुद्ध पुरुष की, ज्ञानवान की इच्छाएं बाधित हो गई, जिसको ठीक से समझ आ गया अपना पूर्ण तत्व, अपना मैं जिसको ठीक से समझ में आ गया, वो शांत होने की कोशिश नहीं करता और उद्विग्न होने का काम वो जानता ही नहीं। पहली बात तो सब लोग समझ सकते हैं कि मुक्त पुरुष का उद्वेग रहित चित्त होता है, ठीक है। फिर कि संतोष रहित होता है। जहां असंतोष है वहां संतोष है, जहां रोग है वहां औषध है, जहां बीमारी है वहां तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती की व्याख्या है, तंदुरुस्ती का सुख तब मिलेगा जब बीमारी आई, बीमारी गई तब तंदुरुस्ती के सुख का पता चलेगा। बीमार और तंदुरुस्त रहने वाले पदार्थ के साथ ही तुम्हारा संबंध नहीं है तो तंदुरुस्ती का सुख कैसा। हूँ सुखी छू, हूँ आनंद मां छू, हूँ संतुष्ट छू, आजनो दाड़ो सारो गयो, ये कहीं पराकाष्ठा नहीं। આજનું વર્ષ અમારું સારું ગયું એ કંઈ આખરી સમજણ નથી. આ આખી જિંદગી અમારી સારી ગઈ, પવિત્રતાથી ગઈ, અમે બરાબર સારા કામ કર્યા અને અમારા જીવનમાં કાંઈ પણ દાગ લાગે એવું અમે કર્યું નથી. લોકોને જે કહેવું એ કહે, પણ અમારું જીવન બહુ સારું છે અને અમને એનાથી સંતોષ છે એમ જે કહેવા માંડીએ અથવા વિચારવા માંડીએ તો એ સમજવું જોઈએ કે હજી આપણે સત્યથી વેગળા છીએ. મારા જીવનમાં દાગ પડે એવું એક પણ ડગલું મેં ઉપાડ્યું નથી. મારા જીવનમાં અશાંતિ થાય એવું એક કે પણ મેં કર્મ કર્યું નથી. એટલે હું શાંતિથી જીવ્યો છું ને શાંતિથી મરીશ. કેટલા વર્ષ જીવ્યા કે હું 60 વર્ષ જીવ્યો છું અને લાગે છે કે 20 વર્ષ બીજા જીવીશ. તું 20 નહીં 1000 વર્ષ જીવ, છતાં જે જીવવાનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ તે જાણ્યું નથી. જીવવાનું લક્ષ્ય જે છે ચિત્તની સાથેના તાદાત્મ્ય ભાવને કટ કરીને પોતાને ઓળખવાનું, એ તું ઓળખ્યો નથી. પહેલા બહુત ઊંચી બાત હૈ, અષ્ટાવક્ર બહુત ઊંચી બાત કહે રહે હૈ. નો ઉદ્વિગ્નમ ન ચ સંતુષ્ટમ. ઉદ્વેગ તો નહીં હૈ લેકિન ઉસે સંતોષ ભી નહીં હૈ. અગર સંતોષ હૈ તો પરધી મૌજૂદ હૈ, સંતોષ હૈ તો અંતઃકરણ કે સાથ જુડાન મૌજૂદ હૈ, કર્મો કે સાથ સત્ય બુદ્ધિ મૌજૂદ હૈ, જગત કે સાથ તાદાત્મ્ય મૌજૂદ હૈ. ઓર સંતોષ ઉસી વ્યક્તિ કો હોતા હૈ જિસ વ્યક્તિ કો જિસ વિષય મેં અસંતોષ હોતા હૈ વહ વિષય મિલને પર સંતોષ હોતા હૈ. અથવા જીસ પદ કો હમ પાના ચાહતે હૈ ઉસ પદ કો હમને પા લ્યા, જીસ વસ્તુ કો પાયા પાના ચાહતે પા લ્યા સંતોષ હો ગયા. લેકિન પાઈ હુઈ ચીજ હૈ ને નારાયણ, પાઈ હુઈ ચીજ ફિર છોડની પડેગી તો અસંતોષ હો જાયેગા. દો પ્રકાર કે વ્યક્તિ હોતે હૈ, સંતુષ્ટ દિખતે હૈ સંતોષી દિખતે હૈ. એક વે હોતે હૈ જિનકો ઇચ્છિત પદાર્થ મિલ જાતા હૈ ઓર બોલતે કે સંતોષ થયો, આહ સંતોષ થયો. કીકાની બહુ ભૂખ હતી ને 5 છોડી પછી બાપુ વડદાદાને ફેરા ફેરા કીકો આવી ગયો, હવે અમારે સંતોષ છે. પણ કીકો જો નહીં ભણે તો ચિંતા, ને ભણશે પાસ નહીં થાય તો ચિંતા, અને કીકો સારો સુવાળો રૂપાળો થયો અને બહેરું ના મળે તોય ચિંતા, અને બહેરું જઈને માયકે રહેવા ઈચ્છે તોય ચિંતા, અને કીકાને ઘર જમાઈ કરે તોય ચિંતા. એ જે સંતોષ છે એ સાપેક્ષ સંતોષો છે. મને આટલા પૈસા છે, આ ધંધો કર્યો, હું ફાઇનલ થઈ ગયો, હું PhD થઈ ગયો, હું MA થઈ ગયો, મને નોકરી મળી ગઈ, અમે સંતોષ છે. પણ એ મળેલી વસ્તુઓ સાથે કરેલો જે ચિત્તનો તાદાત્મ્ય છે એ તને કોઈ વખતે દગો દેશે ભૈલા. જ્ઞાન વિના તારી જે કંઈ સંતોષની ઓડકાર છે એ બધી જ અપૂર્ણ છે. તું પોતાને સેલ્ફ હિપ્નોટાઇઝ કરી રહ્યો છે. અષ્ટાવક્ર બાપજી દઈ રહ્યા છે એ અસલી વાત છે, મોટી વાત છે. નો ઉદ્વિગ્નમ ન ચ સંતુષ્ટમ. ઉદ્વેગ તો નહીં, અશાંતિ તો નહીં, પણ શાંતિની જેને જરૂર નથી, દુઃખ તો જેને નથી પણ સુખની જેને આકાંક્ષા નથી, અણસમજણ તો જેની પાસે નથી પણ હજી કંઈ સમજવાનું જેને બાકી રહ્યું જ નથી, એ કે એણે જગતમાં જે કરવા માટેને અવતાર લીધો કે જન્મ લીધો એનું કામ થઈ ગયું, અને એ કામ કરવું અઘરું નથી, એ અઘરું નથી પણ એના માટેની તરસ પેદા થવી અઘરી છે. ખેલ ખેલના કઠિન હૈ એસા જો ખિલાડી બોલતા વો ખિલાડી નહીં હૈ અનાડી હૈ. તો ચિત્ત મેં જિન ચીજો કી આકાંક્ષા હૈ ઉન ચીજો કો પાકર જો સંતોષ કરતે હૈ તો ઉન ચીજો કો જીતના અધિક પાયા ઓર અધિક ઉન ચીજો કે સાથ હમારા તાદાત્મ્ય હોગા ઉતના હી હમારા અહંકાર અધિક મજબૂત રહેગા. એક છોકરાનો બાપ, હવે હું 2 છોકરાનો બાપ, 4 છોકરાનો બાપ, 1 મકાનનો ધણી, હવે 4નો ધણી, 6નો ધણી, 8નો ધણી, એટલી ખટપટ વધી અને એનાથી જે સંતોષ માને છે એ તો નાનકડા કીકા હોય ને નદીના કાંઠે રીતિના ઘર બનાવે કે જો તારું નાનું ગળ છે ને માલું મોટું ગળ છે, તારા 3 ગળ છે ને મારા 5 છે. નદી કિનારે રેતી કે ઘરોંદે બનાકર જૈસે બચ્ચે સંતુષ્ટ હોતે હૈ ઓર ઉનકા દેખને ભર કા સંતોષ હોતા હૈ, કહેને ભર કા સંતોષ હોતા હૈ, ઓર જબ સમજ આતી હૈ તો ઉસી પુરાને સંતોષ પર ઉને હંસી ભી આતી હૈ કે હમ કિસ બાત મેં સંતુષ્ટ હો રહે થે. જૈસે બચ્ચો કે છોટે છોટે ઘરોંદો સે બચ્ચે સંતુષ્ટ હો જાતે થે ઓર બડે હોને પર અપને સંતોષ કો હસતે હૈ, એસે સમાજ કા સંસાર કા હાલ હૈ, બડે મેં બડા પદ ભી મિલ જાય તો ભી તત્વ જ્ઞાન કે આગે વો મિટ્ટી કે ઘરોંદે સે બરતર કોઈ ચીજ નહીં. अष्टावक्र कहते हैं वो बुद्ध पुरुष जैसे हम संतुष्ट हैं ऐसे वो संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट तो नहीं है लेकिन वो संतुष्ट भी नहीं है। अकर्तृम संतोष रहित, कर्तृत्व रहित, कर्तापन भोक्तापन वास्तविक में हमारे निज स्वरूप में नहीं है। कर्तृत्वम भोक्तृत्वम मन की एक धारा है। कर्तापन भोक्तापन सुखीपन दुखीपन संतोषपन असंतोषपन अपनापन परायापन ये चित्त की एक धारा है। और जिस वक्त चित्त में सत्व गुण होता है उस वक्त सात्विक धारा होती है। रजस प्रधान होता है तो राजस धारा होती है, तमस प्रधान रजोगुण होता है तो ऐसी धाराएं होती है। और चित्त की धारा कभी किसी की एक जैसी नहीं रहती, चाहे जितना पवित्र में पवित्र ऊंचे में ऊंचा व्यक्ति हो अथवा चाहे जितना नीचे में नीचा व्यक्ति हो। व्यक्ति नीचा और ऊंचा कोई लंबाई या मोटाई या जाड़ाई से नहीं होता है, उसके विचारों से ही उसकी ऊंचाई और नीचाई की भावना कल्पना की जाती है। तो जब तक वो चित्त के साथ जुड़ा है तो अच्छे विचार आएंगे तो अपने को अच्छा मानेगा, संतुष्ट मानेगा, और हल्के विचार आएंगे तो अपने को असंतुष्ट मानेगा। अच्छा काम होगा तो अंदर से कुछ होगा कि हाश हम थोड़ कुछ कर्तृत्व तो स्फुरेगा, और बुरा काम हो जाएगा विवेक के खिलाफ हो जाएगा तो अंदर डंक चालू रहेगा। तो राग का डंक और द्वेष का डंक जितना गहरा असर करता है उतना वो आदमी छोटा है, जितना कम असर करता है उतना वो बड़ा है, और कभी असर ही नहीं करता है वो तो साक्षात ब्रह्म है, उसको हमारे प्रणाम। तो अष्टावक्र कहते हैं वो बुद्ध पुरुष वो ज्ञान संतोष भी नहीं है, उसे उद्वेग तो नहीं है लेकिन संतोष भी नहीं है। उद्वेग भी होता है मन में और संतोष भी होता है मन में। मन और चित्त ये सब प्रकृति का खेल है, उस प्रकृति के खेल को खेल समझकर वो एक रस आत्मा में जग गया है। वेद का कर्मकांड भाग जो है, जो वेदांति है वो कर्म का खंडन नहीं करते, उपासना का खंडन नहीं करते, और जो ठीक से भक्त है वो ज्ञान का खंडन नहीं करता। जैसे नरसिंह मेहता कीर्तन करते करते भक्ति उनकी फली थी, और नरसिंह मेहता ने कहा जहां लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं त्या लगी साधना सर्व झूठी। कीर्तन करते करते हुंडी तो स्वीकार हो गई, भगवान ने काम कर लिया और संतोष मानकर रह जाते तो महाराज उनकी साधना पूर्ण नहीं होती। जब ज्ञान हुआ तो हुंडी स्वीकार हो गई तो क्या है, अस्वीकार हो गई तो क्या, कुछ सफलता मिली तो क्या और असफलता मिली तो क्या। मैं एक सवाल पूछूंगा कि स्वप्ने में तुम पर खूब कर्ज चढ़ गया, स्वप्ने में आप दुकान खोले और इतना उधार दिए कि वो उधार डूब गया और आपके ऊपर कर्जा हो गया, आप बड़े असंतुष्ट हैं, बड़े उद्विग्न है, इज्जत का सवाल है, और कोई बैंक मैनेजर ने आपको टेक्निक बताई आप अमुक अमुक आपकी प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज कर दीजिए और हम तुम्हें पैसा देते हैं, पैसे ले लिए, आपको संतोष हुआ, लेकिन भरपाई की चिंता रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। अच्छा, भरपाई की चिंता आपने पूरी कर ली और आपने खूब कमा लिया, भरपाई भी हो गई और महाराज मर्सिडीज कार भी आ गई सपने में, और आपके पास 2-4 करोड़ रुपए हो गए, तो अंदर से सूक्ष्म होगा कि हाँ पहला हुआ तो नरे जरा हूँ कई बार तो नहीं आम तेम था 2000 फेंक देश 5000 आम कर देश वो रहेगा। तो संतोष और असंतोष ये दोनों तब तक जीवित रहेंगे जब तक आपका सपना चालू है। सफलता में खुश और असफलता में घबराहट, सफलता में अहम और असफलता में विषाद, ये तब तक चालू रहेगा जब तक सपना चालू है। और सपना चालू है तो कितना भी आपको संतोष मिल जाए फिर भी जागने की बराबरी नहीं कर सकता है। सपने में कितनी भी सुविधाएं मिल जाए और कितना भी तुम्हें संतोष मिल जाए फिर भी जागृत का जो मजा है वो सपने की थप्पड़ों में मजा नहीं है। लेकिन हम लोग आदि हो गए थप्पड़ खाके मजा लेने के लिए, जैसे हरड़े खाकर पानी पीते ना तो जरा स्वादिष्ट लगता है, मीठा लगता है, और जलेबी खाकर पानी पीते हैं तो फीका लगता है, बड़े पद भोगकर छोटा मिलता है तो कुछ नहीं लगता है, और छोटे पदों में से कुछ बड़ा मिलता है तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन वास्तविक में जिसको लगता है उसका अस्तित्व ही नहीं है। जिसको लग रहा है वो मन के साथ तुम जुड़ गए हो, लगता मन को है और सोचते हो कि मेरे को लगा। श्री राम। मैंने सुनाई थी वो कहानी कि मानवी अगर आत्मज्ञान के तरफ नहीं है तो उसकी बाह्य जो चेष्टा है न वो हास्यास्पद हो जाती है। आदि मानव जब ईश्वर के तरफ से पैदा हुआ, कहानी है, कल्पी हुई भी हो सकती है सत्य समझने के लिए, मानव आ रहा था, बैल भी आ रहा था, कुत्ता भी आ रहा था, ऊंट भी आ रहा था, बगला भी आ रहा था। मानव ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी विधाता ने रची? उन्होंने कहा हम तो 40-40 साल हमारी उम्र है। मानव सिर कूटने लगा कि उन तुम्हारी 40-40 और मेरी 20, मेरी जिंदगी छोटी क्यों? दूसरों ने कहा कि हम पशु जिंदगी में परेशान है, वैसे ही हमको अच्छी नहीं लगती हमारी 20-20 साल मानव तुझे हमने अर्पित की। तो 20 साल तो मानव की निजी जिंदगी थी, 20 साल बैल की आई, 20 साल कुत्ते की आई, 20 साल बगले की आई और 20 साल ऊंट की आई, हो गया 100 साल का मानव। अब कहानी कहती है कि प्रारंभ के जो 20 साल होते ना वो तो पढ़ता है, संयम करता है और मानवीय जीवन जीता है। दूसरे 20 जब चालू होते ना, 20 से 40 तो काम आदि इच्छाएं होती है, फिर वो वर होता है, गाड़ी वर घोड़ों करता है, फिर गाड़ी लाता है, मतलब फिर वो बैल बन जाता है, गृहस्थी की गाड़ी खींचने को शुरू हो जाता है। 40 साल तक तो ठीक है, मानव में से बैल तक पहुंचता है, और दूसरे जो 40-20 साल हैं, 40 से 60 साल, फिर वो जो चुंबकत्व है, जिस चुंबकत्व से उस तत्व को जानने की बुद्धि खिलनी चाहिए, जो जीवन का रस है, जो तत्व है, उस तत्व को बैलगाड़ी बढ़ाने खड़ाने में खींचने में खर्च कर दिया, फिर उसके चित्त में खिन्नता प्रविष्ट हो जाती, फिर छोटी छोटी बात पे करने को आता है, दो होता है ना, इसलिए झरी झरी बात में खींच ही जाए, तो पहले 20 वर्ष मानवीय जीवन हम लोग जी लेते हैं, दूसरे 20 वर्ष बैलगाड़ी खींचते हैं, और तीसरे 20 वर्ष महाराज हमारा मन कुत्ते जैसा हड़कने लग जाता है, 60 वर्ष है ना तो झरी झरी बात में भड़की जैसे, और चौथे 20 साल जब चलते ना तो महाराज क्या कहना, मन में तो जो भोगा है, जो देखा है, जिनसे संतोष मिला है वहां आकर्षण है, और जिनसे दुख मिला है वहां विकर्षण है, फिर भी बाहर से ही करके बगला चाल चल के जीवन बिताने की कला आ जाती है 60 से 80 साल तक की। महाराज महाराज जी को से ये चौथे 20 साल जो है, अगर हम इस चित्त के साथ जुड़े रहे तो ये हाल होते हमारे, अंदर कोई हो पर बाहर के साइड थी 80 वर्ष की उम्र में बहुत तरकीब हो, बगला छाप जीवन बहु हो। जय श्री कृष्ण। तमारु एवं हूं एम कहते नहीं, पर जे मन नी साथे जोड़ा है एमनू लगभग एवं हो, आपका है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जो मन के साथ जुड़कर ही जीते हैं उनका ऐसा ही होता है, आप क्या है वो आप ही जाने। मधुमंगम्मा अगर ज्ञान नहीं पाएंगे तो भाई हम तो क्या तुमको मोंगम में जा चिमकी दे रहे हैं, लेकिन न जाने क्या क्या मौत क्या क्या मोंगम में देगी और जाहिर में देगी। अखंडानंद जी को गुरुजी ने डांट दिया, फिर गुरुजी जरा मजे में थे तो पूछा कि गुरुदेव उस दिन तो कोई कसूर नहीं था और आपने हजारों लोगों के सामने मेरे को 2 पैसे का कर दिया, बहुत डांटा। गुरु ने कहा बेटे संसार में न जाने कितने कितनों की गालियां सुननी पड़ेगी, कितने कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितनी मौतें सहनी पड़ेगी, कितना कितना कष्ट सहना पड़ेगा, और जो गुरुओं का सह लेता ना उसको दूसरा सब हजम हो जाता है। श्री राम। इसी प्रकार गुरुओं के गुरु जो श्री कृष्णचंद्र हैं, उन्होंने गीता में 108 बात मोघम में कही, 108 गालियां दी है ऐसे व्यक्तियों को जो चित्त के साथ जुड़कर अपना जीवन पूरा कर देते। नराधमा आसुरम भावम आश्रिता विमूढ़ा, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ये सब क्या है, ढकी हुई तो है और क्या है, मोघम्मा बधु कही दीदू। वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ महारामायण जैसे पवित्र ग्रंथ में भी कुछ मसाला रख दिया कि हे राम जी, उन नराधमों को मेरा अधिकार है जो खाने कमाने में जिंदगी पूरा कर देते और जिस तत्व को जानने के लिए बुद्धि मिला है उस बुद्धि को भी संग्रह और विसंग्रह में नाश कर देते हैं एक दूसरे के टांटियां ताड़ने में। उन पशु धर्मा व्यक्तियों का संग तुम मत करना। हे मंकी ऋषि, मरुभूमि का मृग होना अच्छा है लेकिन अज्ञानी मूढ़ों का संगी होना अच्छा नहीं, ऐसा कहा वशिष्ठ जी ने। तो हमारे 20 साल पहले मानवता के होते हैं, दूसरे 20 साल बैल जैसी जिंदगी होती है, तीसरे 20 साल कुत्ते जैसा हड़कान आ जाता है हमारे चित्त में आकर्षण और विकर्षणों के कारण, और चौथे 20 साल महाराज मन बगभगत हो जाता है। और कई लोग रिटायर होकर गंगा किनारे जाते हैं लेकिन बुढ़े बुढ़ों के बुढ़े हाउस को देखो तो कोई नू खेच से न, कोई नू फेंच से न, कोई नू काई कर से न, कोई नू काई कर से, कारण के जे करेलू छे बधु अंदर तो होय जाय क्या, એટલે ઘરડાનું ઘર જોવા જેવા જેવું છે। મારો કે મારી તેલની દુકાન હતી, હું કે આમ હતો કે હું તો કે ડીએસકે તો હું કે આમ હતો કે હું આમ હતો, પણ તું ભાઈ દેવોનો દેવ હતો એ કથા સાંભળી હોત તો પછી ખબર પડત। એક સમ્રાટ કિસી બાબા કે પાસ ગયા ઓર બાબાને ઉસકો સેવા ચાકરી કા કામ દિયા ઓર લોક નારાજ હો રહે થે, બાબાને દૂસરે આદમી કો ભેજા, ઉસ આદમીને ઉસ नूतन फकीर सम्राट में से बने हुए साधक को जरा धक्का मारा तो उसने कहा महाशय, छह दिन पहले तुम ऐसे अंधे नहीं हो सकते थे, मेरे को जानते नहीं, अभी धक्का मार दिया लेकिन संभल के चलना, मैं राजा था। जय जय। वो जो अपने चित्त के साथ का जो तादात्म्य है, जो संतोष कराता है, वो असंतोष भी आखिरी तक ले आता है। राज्य भोग कर 60 साल चले गए तो आराम से तुम भजन करोगे नहीं, अगर विरह की अग्नि ने पुराने संस्कार नहीं जलाए तो राज्य करने के बाद जहां भी जाओगे तो मेरे को इतनी सहूलत होनी चाहिए, मैं इस घर से आया हूं, इस पद से आया हूं, तो मेरे लिए आश्रम में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और मेरे लिए लोगों की निगाह ऐसी होनी चाहिए, उसमें तुम्हारा मन काम करेगा। इसीलिए ज्ञानात दग्ध कर्माणी, ज्ञान से कर्म जल जाते। कर्म का मतलब कोई ऐसे कोई छोटे मोटे या स्थूल बैठे संस्कार ही तो है, कर्म संस्कार डाल देते हैं, ज्ञान से वो संस्कार जल जाते हैं। महाराज 80 से 100 वर्ष जो आखिरी उम्र है हमारी बुढ़ापे की, उस वक्त जो ऊंट का हिस्सा है महाराज, केर झुक जाती है, लच्छी हाथ में आ जाती है और लड़का कोई खींच के ले चलता है तो बिल्कुल दूर से तो वही दिखता है रणभूमि का यान, ऐसी जिंदगी हो जाती है। ये सारी की सारी हमारी जो जीवन की मश्करी होती है वो चित्त के साथ एकता जोड़ने के कारण होती है। और ये जरूरी नहीं कि आप उस चित्त के साथ जुड़े हैं और अब उसके साथ आप संबंध छोड़ नहीं सकते, ये बात नहीं है। संबंध जोड़ना जिसको आता है उसको संबंध तोड़ना भी आता है। जिस वस्तु को आप अपनी मानते हैं उसी वस्तु को आप पराई भी मान लेते हैं। खरीदी करके आए तो आपने सब माल अपना माना है और जब बेच दिया तो पराया हो गया। लड़की 20 साल की है अपनी मानते हैं, शादी करके 3 फेरे फिर के 7 फेरे फिर के चले गए वो पराई है। लड़की 20 साल माँ बाप के घर रहती अपना घर मानती है और जरा फेरे फिर लिए पूछो कि ये तेरा घर है कि नहीं, मेरा घर तो फलानी जगह है, ये मेरे मायके आई हूँ, ये मेरे भाई का घर है, मेरा घर तो वहां है। तो जैसे जो अपना जिसको आप अपना मानते हैं उसको न मानने से उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। और दूसरी सिद्धांत की बात है कि मान्यता किसी साधन से नहीं छूटेगी, ध्यान देना, माला करने से मान्यता नहीं छूटेगी, शीश आसन करके झाड़ पे लटकने से मान्यता नहीं छूटेगी, दान करने से मान्यता नहीं छूटेगी, मान्यता बदलेगी। पहले आप लोभी थे अब आप दानी हुए, पहले आप दुराचारी हुए अब आप सदाचारी हुए, मान्यता बदलना एक बात है और मान्यता को बाधित करके आत्मज्ञानी हो जाना दूसरी बात है। पहले आप करप्टेड थे अब आप सज्जन हो गए, पहले आप खोदरा थे अभी आप महाराज एक ही टाइम खाते हैं, अब आप उपवासी हैं, लेकिन हैं जरूर, इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। पहले उद्योगपति थे और अभी भक्तराज हैं, लेकिन हैं जरूर, क्योंकि भक्त भी तुम्हारा चित्त बनता है और उद्योगपति भी तुम्हारा चित्त बनता है, पत्नी भी तुम्हारा मन बना है और पति भी तुम्हारा मन बना है, मावा भी तुम्हारा मन बना है और माई भी तुम्हारा मन बना है, मित्र भी मन में छुपा है, शत्रु भी मन में छुपा है। और मन के साथ का संबंध जिसने डिस्कनेक्ट कर दिया वो बुद्ध पुरुष, उस ज्ञानी की तुलना किससे की जाए। जीवन में कभी द्वेष की तपन होती है, अभी कभी राग का आकर्षण होता है। जो आपको अच्छी चीजें लगती है और जो सुख दे गई है उसका आकर्षण आपको खींचता है, और जिन घटनाओं से जिन चीजों से दुख हुआ है उसका भय भी आपको अंदर आंदोलित करता रहता है। और ऐसा नहीं है कि सब लोगों के हृदय में भगवान के लिए तड़प आने के लिए और इसीलिए सब मंदिर में जा रहे हैं। साक्षात्कार करने का तूफान जगा है सब में, इसीलिए मंदिर में मस्जिद में पूजा पाठ कर रहे हैं। ना ना, कुछ भयों ने घेरा है, उस भय को दूर करने के लिए उसकी जरा सा रहमत चाहिए, तो उसका उपयोग भी ये करते हैं कि जहां से सुख मिला है वहां चित्त के रहे और जहां से दुख आया वो दूर हटे लेकिन चित्त में बैठे रहे। ये हमारी नासमझी मौजूद रहती है। जय जय। इसीलिए जब तक ज्ञानवान महापुरुषों का संग नहीं मिलता है, सत्संग नहीं मिलता है, तब तक हम साधन भजन अपने मनमानी जो क्रिया प्रतिक्रिया करते तो अपनी मानसिक जगत और मानसिक दुनिया को मजबूत किए हुए हम अपना जीवन पूरा कर देते हैं। हमारी जो चार दीवारी में हम कैद खाने में आए हैं, गर्भों की यात्रा भोग रहे हैं, और वही गर्भों की यात्रा में कोई विघ्न न पड़े, मेरे धंधे में विघ्न न पड़े, मेरे रोजी रोटी में विघ्न न पड़े, मेरे ईगो के पोषण में विघ्न न पड़े और बढ़े, तो गर्भों की यात्रा करने के सामान की हम सुरक्षा करते आए हैं। मुक्त होने की हम में लालसा नहीं, और जब तक वर्तमान जीवन की तुच्छता नहीं महसूस होती है, मन की कल्पनाओं की तुच्छता महसूस नहीं होती है, जिस समय हमारा ये जीवन क्षणभंगुर है ये समझ में नहीं आता है और ये सारी हमारी मन की दौड़ अंत में कुछ नहीं देगी इस बात का विवेक नहीं आता, तब तक हमारे चित्त में हमारे मन में आत्म शांति पाने का अथवा ऊंचे पद को पाने का उत्साह नहीं आता है, बुद्धि में निर्णय नहीं होता है और शरीर में बल नहीं आता है। मैंने बताया था कि एक काका आए, बोले स्वामी जी 10 साल से आपका नाम सुना है, खूब प्रशंसा भी सुनी है, जो पवित्र हैं वो आपकी वाहवाही करते हैं, आपकी बहुत बातें बताते हैं, लेकिन मैं आपका दर्शन करने के लिए पिछले 10 साल से विचार कर रहा था, आज ही दर्शन हुआ। बाप जी मैं तो रोज आने की इच्छा होती है लेकिन आपका आश्रम दूर पड़ता है। मैं क्या काका कहाँ रहते आप? कि रामनगर रहू छू। मैं क्या मेरे भाग्य कमजोर है, रामनगर साबरमती रहता हूं, आश्रम आपका दूर पड़ता है। श्री राम। तो ये क्या है कि जिन चीजों को मूल्य जितना देना चाहिए उससे हमने अनंत गुना मूल्य दे रखा है। इन चंद टुकड़ों के संसार के रीत रिवाजों को, रुपए पैसों को, इज्जत आबरू को, वाहवाही को, हालांकि जो कि आज से 100 साल 200 साल पहले हमारी जगहों पर आए थे, जिए थे, उनका कुछ नहीं बचा, उनकी अस्थियां भी नहीं दिखती, फिर भी इन चीजों को इतना मूल्य दिया है कि जो परम मूल्यवान परमात्मा तुम्हारे साथ हर पल में है, हर श्वास में है, हर धड़कन में है, उसका मूल्य समझने के लिए आप समय तक नहीं निकाल सकते। रामनगर बहुत दूर है आश्रम। जय श्री कृष्ण। ओ काका को तो मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन ऐसे काका केवल रामनगर में नहीं है, सारी दुनिया में हम लोग काका लोग ही तो बैठे। वशिष्ठ जी कहते हैं और नानक जी कहते हैं, नानक जी कहते हैं करनु हतो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद, कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवत अंध। धन जो बन यूं जाएगा, जाविद उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज क्यों चाटत जग धूल। जिसी का तू बंदा उसी का सवारा, दुनिया की लालच ते साहेब बिसारा, न कीनी इबादत न राखा ईमान, न कीनी बंदगी पुकारे जहान, शर्मिंदा न हो कछु नेकी कमाई, नालत का जामा तू पहरे न जाई, गफलत करेगा तो खाएगा मार, बेटी और बेटा लहेगा नसार, दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पे न तेरा न मेरा। तो ये मेरा इस प्रकार का हमारी मनोवृत्तियों के अनुसार हम बह जाते हैं और बहते बहते परेशान भी होते हैं, फिर भी लगता है कि शायद कुछ सुख मिल जाए, शायद संतोष मिल जाए। और दो प्रकार के व्यक्ति संतुष्ट होते हैं, एक वे होते हैं जो कुछ इच्छित पाकर थोड़ी देर के लिए लंबी सांस ले लेते संतोष है, दूसरे वे होते हैं कि जंप लगा लगा कर थक जाते हैं, चुनाव में एक बार दो बार चार बार खड़े रहे लेकिन सरपंच नहीं हो पाए, कहे कि आप सरपंच में पड़ता है नसीब के, कहा कताली ने आए कहीं आवी पड़े पद तो के हड़प ले आ बैठा बैठा थे, पण के हवे कोई पूछतू ज नथी के हवे आ गामना लोको जेवा छे के आपरे मोटेरा तक छे जेवू के आपरे तो नथी बारे छे जेवू आपरे तो राजीनामो आपवा तैयार छे, कारण के आपरे कोई मानतू नथी, अंदर छे कोई मारू माने कोई मळे पण हवे थाकी गया, शरीर साथ आपतो नथी, लोको चमचागिरी करता नथी, कारण के लोको जुए ज्यां होय कस त्यां वाहवा करे, ज्यां होय नहीं वाहवा से नहीं करे, आ जगत बधू उगता सूर्य नु छे, हो जोजो क्यांक सपराई ना जता लोको वाहवा करे, एटले तमे मोटा थईने बेही ना जता, तमारा मोटापणने जोजो, वाहवा करने वाले तो अपने स्वार्थ की वाहवा करते, तुम्हारी वाहवा नहीं करते नारायण, ऑफिसर के पास अपने पद के सिवाय और चाहे दो पैसे की भी योग्यता न हो फिर भी ऑफिसर का उपयोग करने वाला व्यक्ति उसको भगवान की बराबरी में साहब साहब करके बिरदाएगा, इससे वो थोड़े भगवान बन गया। तो दी हुई जो लोगों की वाहवाही है या धन्यवाद है उस पर जो जिएगा वो तो महाराज ऑक्सीजन पर है, वो तो बड़ा दयनीय स्थिति है उसकी, वो तो जर्मन टॉय है, चार आदमी ने वाहवा कर दी तो टॉय अपने ढंग से चली और चार आदमी ने निंदा कर दी तो टॉय रिवर्स में आ गई, वो तो रोटी अपनी खाते श्वास अपना खर्च करते हैं और लोगों के धागों से नाचते रहते हैं, उन व्यक्तियों के पद की क्या कीमत। अपने सेठ हैं, छोकरे की रिंग सेरेमनी होती तो कम से कम हेड़ो तो कजे यार, कुछ तो पेग कजे, पंजी इज्जत जो सवाल है, तो कमाने में तो पाप हुआ लेकिन अब खर्चने में रिंग सेरेमनी में भी जरा वाइन चाहिए, और ये वो किस लिए कि लोग अपने को जरा ठीक है और तुम्हारा फंक्शन जरा अच्छा गया, क्या हाल है, क्या संतोष के, हाँ संतोष संतोष, 25,000 खर्च हुआ लेकिन फंक्शन फर्स्ट क्लास हुआ, संतोष हुआ, लेकिन वो तुम्हारा संतोष और अष्टावक्र का संतोष कुछ निराला है। जैसे तुम इन तुच्छ विकारों से, तुच्छ परिस्थितियों से, तुच्छ गुलामियां सहन करके घड़ी भर के लिए संतोष चाहते हो, बुद्ध पुरुष चाहते हैं, ये हमारे को संतोष नहीं चाहिए, इसलिए अष्टावक्र कहते हैं वो ज्ञानी संतुष्ट भी नहीं होता है, उद्विग्न तो नहीं होता है लेकिन संतुष्ट भी नहीं होता है। तो एक आदमी कल्पित संतोष मानकर संतुष्ट हो जाता है, दूसरा आदमी हार कर संतुष्ट हो जाता है। जय जय। और बहुत सारे लोग जब मिलते हैं ना, चलो अपने फकीर बन जाएं, तो क्या हुआ कि घर में पत्नी के साथ बना नहीं, कि संसार जेवो छे, पति के साथ बना नहीं, डाइवर्स मिल गए या ले लिए, कि चलो कि आपरे के थई जाओ, भाई के साथ बना नहीं, कि चलो कि बन जाओ। इस कारण जो हम बन जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, मतलब अगर उधर सेट हो जाते तो अच्छा था, सेट नहीं हुए इसलिए वो वैसा है, वैसा है, वैसा हो जाता है। तो संतोष और असंतोष ये दोनों ही वासनाओं के रूपांतर है, लेकिन जो निर्वासनिक पद में आत्मा में जग गया उसके लिए संतोष की भी मांग नहीं, वो संतुष्ट भी नहीं है, क्योंकि असंतोष उसको है ही नहीं। उत्तम केम छो, तबियत सारी छे, हाँ हवे ठीक छू, मांदा हता तो ठीक, पर रोग ज नथी तो औषधि गई, डॉक्टर हो गया, इंजेक्शन हो गया, केम दवा सारी हती, पर भाई जरूर कोने हती, दवा जेने फायदो करती हो, जे मांदो हो एना माटे दवा सारी, पर जेने रोग स्पर्श ना करतो एना माटे दवा सा काम नी छे। इसीलिए जो मरीज है उनके लिए दवाइयां कीमती होती है, लेकिन जो मरीज तत्व में ठहरे उनके लिए दवाइयों की जरूरत है, लेकिन जो आत्म तत्व में ठहरे हैं उनको धन्यवाद की दवाई भी क्या और निंदा की दवाई भी क्या। दवा का न थींदी मुझे दर्द जी, हकीमन के कैडी खबर मर्ज जी, मुझो दारू दवा तुझो दीदार आ, बस देखारण हकीमन के बेकार आ, चिनी तू त साई मुखे छिनणो नाहे, परे तो खा प्रीतम मुखे वंजणो नाहे, छो कि कैल जिंदगानी जो इकरार आ बस देखारण हकी मन के बेकार आ मुझो दारू दवा तुझो दीदार आ। मेरा दारू और दवा तेरा ही दीदार है, तेरा ही तत्व सार है। हकीमों को दिखाना अब मेरे बश की बात नहीं और आवश्यकता नहीं। हकीमों को मेरे दिल के मर्ज का पता नहीं चलेगा। हाल सुने दिल वाला, हाल सुने दिल, दिल का हाल सुने दिल वाला, ये तो दुनिया जानती है फिल्म के गाने को। दिल का हाल सुने दिल वाला, तो जिसके चित्त में विरहा अग्नि जलती है, उसके चित्त में संसार की चीजें न भरकर परमात्मा की प्यास भर दी जाए, तो विरहा अग्नि उसके आकांक्षाओं को, सफलता और असफलता के विचारों को जलाकर उसे निर्मल कर देगी। और निर्मल चित्त जब होता है तो गुरु का वचन ठहर जाता है, तत्त्वमसि वो तू निर्मल का आधार चैतन्य है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे स्वप्न न भावा। हम सोचते हैं कि किसी से झूठ बोलकर या किसी को सुहावनी सुंदर खबरें देकर किसी को प्रभावित करके हम ये काम कर लिया और हम संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अंदर के धबकारे कुछ और होते हैं। कोई चालाकी से, कोई होशियारी से आपका काम बन जाता और आप संतुष्ट होते हैं, तो ये ऑक्सीजन का संतोष है। कोई कोर्ट कचहरी में केस जीतकर भी संतोष हो जाता है, तो ये कोई आपका वास्तविक संतोष नहीं है। जब तक मृत्यु सिर पर खड़ी है और कोई आदमी संतोष मानकर जी रहा है, तो या तो बेवकूफ है या तो दगाबाज है, या तो उसे वास्तविक संतोष का पता नहीं है, या तो किसी को दगा देने के लिए कहता है हमारे तो संतोष है, हमारे तो लहर छे है। तो अष्टावकर मुनि जनक को कहते हैं कि वो जो ज्ञानी है, उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तृत्व रहित, उसका जीवन फिर सूखे पीपल के पान के सरीका हो जाता है। मुझे लोगों का सुधारा करना, ये भी उसके चित्त में संकल्प नहीं होता है। मुझे इतना बनाना है, ये भी उसके चित्त में संकल्प नहीं होता है। और ये बन गया बिगाड़ना, ये भी संकल्प नहीं। आ गई लहर, चल दिए। आ गई लहर, बैठ लिए। आ गई लहर, बोल दिए। सहज स्वभाव, जैसे वीणा पर जैसी उंगलियां रख दी ऐसा स्वर चलता है, ऐसे ही लोगों के संकल्प, लोगों के प्रारब्ध उस बुद्ध पुरुषों के द्वारा जैसा ही बुलवा दे, जैसा ही करा दे, जैसा ही खिला दे, जैसा ही पिला दे, उसका जीवन सहज स्वभाव हो जाता है। ऐसा जीवन कबीर जी का था, नानक जी का था। साधु भाई सहज समाधि फली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली, साधु भाई सहज समाधि बली। आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू, खुली आंख में हस हस पेखू, सुंदर रूप निहारू, साधु भाई सहज समाधि बली। तो जीवन में कुछ पाने की इच्छा होती है और कुछ हटाने की इच्छा होती है, लेकिन ये कुछ कुछ पाने की इच्छा और कुछ कुछ हटाने की इच्छा तब तक मौजूद होती है जो वास्तविक में पाया हुआ है उसका बोध नहीं है, और जो वास्तविक में हटा हुआ है उसके हटने का जब तक भान नहीं है। जो सचमुच में हटा हुआ है उसका भान नहीं है, और जो वास्तविक में पाया हुआ है उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए कुछ पाने की इच्छा रहती है, कुछ पाने की दौड़ रहती है, कुछ हटाने की दौड़ रहती है। बहुत गहरी बात है ये। जो सचमुच में हटा हुआ है उसका बोध नहीं है, इसलिए हटाने में लगे हैं, और जो सचमुच में पाने योग्य और मिला हुआ है उसका अनुभव नहीं है, उसके लिए पाने की दौड़ है। तो जो हटा हुआ है उसका ज्ञान नहीं है, और जो वास्तविक में पाने योग्य है उसका अनुभव नहीं है, इसलिए जीवन की दौड़ वृथा चली जा रही है। आ मळे तो निरात, आ मळे तो निरात, आटलू मळे तो निरात, निरात निरात। लेकिन आज तुम्हारे पास जो है वैसे का वैसा दूसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसमें शंका है, लेकिन जो मिला हुआ है वो एक दिन छोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उसमें कोई शंका नहीं। तुम्हारे पास है, आपके पास जो चीजें, वस्तुएं, शरीर, संबंध, जो कुछ है, ऐसे कैसे दूसरे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे उसमें संदेह होगा, लेकिन ये जो बने हुए संबंध हैं वो टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे इसमें शंका नहीं हो सकती। तो जो जिस संबंधों को बढ़ाना या जिन वस्तुओं को बढ़ाना चाहते हैं वो तो छोड़ने के लिए, और जिसके साथ संबंध तुम्हारा कभी टूट नहीं सकता है, उसको समझने के लिए जीवन है। जिसको समझना है उसके समझने की उत्कंठा नहीं है, क्योंकि चित्त मलिन हो जाता है इस आकांक्षाओं के कारण। और जो छूटा हुआ है उसके भय से हम नहीं छूट रहे, बीमारी के भय से, बुखार के भय से बुखार आ जाना ठीक है, निंदा के भय से निंदा हो जाना ठीक है, अपमान के भय से अपमान हो जाना ठीक है, वियोग के भय से वियोग हो जाना ठीक है, और मृत्यु के भय से मृत्यु हो जाना ठीक है। लेकिन आप सजग होकर देखें कि ये मृत्यु हुई, ये अपमान हुआ, महाराज वो आपके लिए साधना हो जाएगी। अपमान आप नहीं चाहते, होता है, जब अपमान होता है ना उसको देखो जरा, जितना अपमान के भय से भयभीत थे ना, उसका मतलब ये नहीं कि नकट्टा होके बुरे काम करे, नहीं, आप अच्छे काम करो, फिर जिसका मन पवित्र होगा वो आपकी जय जय करेगा, आदर करेगा, और जो मलिन होगा वो जिसके पास जो होगा वो देगा। अपमान का भय और मान की इच्छा, संयोग की इच्छा और वियोग का भय, उपलब्धि की आकांक्षा और उसके थामने की आकांक्षा, इन सब ने हमारी असलियत को दबा दिया। और ऐसे ही संस्कार डालते आए, ये मिले तो सुखी, इतना मिले इसको है इतना, तो किसी का कुछ देखकर मन में हो जाता कि ऐसे बनूं ऐसे बनूं ऐसे, नहीं, उसमें भी जो पड़ा है वही का वही तेरे में, तू जहां है वहीं का वहीं अपना फूल खिलता। कोई दावा कर दे कि मैंने ये बनाया है, मैंने ये कमाया, मैंने आश्रम बनाया, मैंने धर्मशाला बनाई, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, हकीकत में ये गलत बात है। आप नहीं करते, नियति में होता है। सेव का पौधा कह दे कि मैंने सेव बनाया, तो ये दावा तब कर सकता है कि जब जामफल भी बना सके। जय श्री कृष्ण। मैंने बेटे को जन्म दिया है, तो तुमने बेटे को जन्म दिया, तुम तब दावा कर सकते हो जब तुम बछड़ी को भी जन्म दे सको। ये तो सिस्टमेटिक हो रहा है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, ईश्वर की लीला है। छोकरा तने में जन्मा तो बुद्ध वाले भाई एक बार बैठे थे अपने आराम रूम में, वो होता है ना छठी, उसको માળિયું કહીએ ને, માળિયું ગુજરાતીમાં માળિયું કહેવાય, માળિયા ઉપરથી કોઈ ગાંસડી પડી હતી જૂની પુરાણી પસ્તીઓની કાગળોની, કે ચકલાએ કંઈ ખદબદ કરી હશે ગમે તે રીતે, પણ એ ગાંસડી કંઈક સડી ગઈ હશે, એ ગાંસડી છૂટી પડી, ઓ ગઠરી છૂટી ગીરી ગીર પડી, તો સબ પેપર પન્ને બંને સબ હો ગયે। તો બુદ્ધુ અલવાઈને એક પેપર ઉઠા કે દેખા, તીસરે ધોરણ કા દેખતા હૈ, કહો વિજ્ઞાન મેં ચાર માર્ક, ગણિત મેં તીન, भूगोल में दो, इतिहास में पांच, समाजशास्त्र में जीरो। लड़का बस आए तब तक तो आग बबूला हो रहा था, क्या अल्लू तने कीधु पण आ छ मासिक नी सप्लिमेंटरी मां तो आटला मार्क लायो, मारी इज्जत कोई छोकरो के पप्पाए मारी नती पण तमे भणता था त्यार नी छे, वो मेरी सप्लिमेंटरी नहीं है पप्पा, मैंने तो वहां पर रखी है, यही तो ये है, आपके जरा ऊपर नाम पढ़िए, हमारू पेपर नहीं तमारू छे। चुप हो गए। दूसरे की गलती पर जितना क्रोध आता है या डांटने की युक्तियां आती है, वही गलती जब अपनी लगती तो कैसा आदमी ठंडा हिम जैसा हो जाता है, ठंडो गैस जो थी जाए छे। ऐसे ही दूसरों में जिसने अपने आप को देखा, उसके चित्त में भी अंदर से वैसी ही शीतलता और वैसी ही तसल्ली हो जाती है। बताओ कितना वो बुद्ध पुरुष, कितना ब्रह्मज्ञानी स्वतंत्र है, क्रोध करते हुए भी अंदर से वो शीतलता। खिद्योपि न खिन्नते, सचिंतोपि निश्चिंत, वो चिंतित दिखे फिर भी भीतर से निश्चिंत। सक्रियोपि अक्रिय, सक्रिय होते हुए भी अंदर से कभी कुछ करता नहीं, कभी कुछ धरता नहीं, लेता नहीं देता नहीं, समझता है कि ये विराट की लीला है, परमात्मा की लीला, ये सब हो रहा है।